नमस्कार भारत, 4 अप्रैल दिन सोमवार, मैं हूं संदीप सोनी। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज। आज ही बनेंगी महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री।
मेरे वालिद अपनी बात के पक्के थे, मैं भी उनकी बात के पक्की हूँ, मगर जहाँ उन्होंने एक रिश्ता जोड़ा बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, उसमें एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना है।
कोलकाता में खेले गए T20 विश्व कप के फाइनल में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराया।
क्रेडिट देनी होगी ब्रेथवेट को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो छक्के लगाए, 4 छक्के, और बेन स्टोक्स कोई ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, वो 18 रन बनाना ओवर में आसान नहीं है, खासकर के आखिरी ओवर।
पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान की डायरी और समाचार पत्रों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज दिन भर चलेगा। असम में 126 में से 65 विधानसभा सीटों के लिए मतदान पहले चरण में आज हो रहा है। उधर पश्चिम बंगाल की 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए पहले चरण के पहले दौर में आज 18 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। असम में दूसरे चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में कुल 6 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पनामा की कंपनी मोसाक फोंसेका के गोपनीय दस्तावेज लीक हुए हैं, जिसमें कई प्रभावशाली लोगों के तार इस कंपनी से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। जर्मन अखबार को मिले इन दस्तावेजों से पता चलता है कि मोसाक फोंसेका ने किस तरह अपने ग्राहकों के काले धन को वैध बनाने में, प्रतिबंधों से बचने में और कर चोरी में मदद की। कंपनी का कहना है कि लगभग 40 साल से बिना किसी अड़चन के वो काम कर रही है और उस पर कोई आपराधिक आरोप नहीं लगे हैं। कंपनी के दस्तावेज में लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सरगेई रोल्डुगिन का नाम भी सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकार संघ के गेरार्ड रायल ने कहा,
This will deal a really big blow, we think, to the offshore world, which of course has gone through many reforms over the last few years.
हमें लगता है कि विदेश स्थित कंपनियों के लिए ये एक बड़ा झटका साबित होगा। इस मामले में पिछले कुछ सालों में कई सुधार हुए हैं, लेकिन दस्तावेज से हम ये देख रहे हैं कि हर बार सरकार गलत चीज़ों को रोकने की कोशिश करती है तो कोई नफीस नाम लेकर ये सब और गूढ़ तरीके से होने लगता है। ये नियम सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को उनका काम जारी रखने दिया जाए। ये थे गेरार्ड रायल के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सऊदी अरब में पुलिस को निशाना बनाकर किए गए एक हमले में एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई है। अल दिलाम शहर में हुए इस धमाके की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। बारूदी सुरंग से किए गए हमले में पुलिस की गाड़ियों को नुकसान हुआ है। सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने हमले में मारे गए व्यक्ति की राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सीरिया में चरमपंथी संगठन अलकायदा के सहयोगी गुट नूसरा फ्रंट के एक प्रवक्ता की मौत हो गई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इदलिब प्रांत में अबू फिरास और 22 अन्य चरमपंथियों की मौत हो गई है। अभी यह साफ नहीं हो पाया कि यह हमला किसने किया था। सीरिया में अस्थायी युद्ध विराम लागू है, लेकिन नूसरा फ्रंट और चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट इसमें शामिल नहीं है। नाइजीरिया में अधिकारियों ने कहा है कि चरमपंथी संगठन अलकायदा से जुड़े एक गुट अंसारू के नेता की मौत को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज वोट डाले जाएंगे। राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है, तरुण गोगोई मुख्यमंत्री हैं, कई वर्षों से सत्ता पर आसीन हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार उन्हें सत्ता से हटाने का दावा कर रही है। राज्य में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए किसी दल से कोई गठबंधन नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और असम गण परिषद के साथ चुनावी गठबंधन किया है। सीधे चलेंगे जोरहट बीबीसी संवाददाता सलमान रावि के पास, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ आवाजें जो उन्होंने अभी अभी हम तक पहुंचाई हैं।
तो आप लोग सब यहीं के हैं?
हम यहीं का हैं।
अच्छा, हाँ। आप भी?
सब यहीं के हैं।
सब बंद है चारों तरफ अभी तो
बंद है।
तैयारी हो गई पूरी वोट की?
वोट की तैयारी हो गई, वही हम लोग पढ़ रहा है।
क्या क्या पढ़ रहे हैं?
क्या मतदान की बात कर रहे हैं हम लोग? क्या बात कर रहे हैं? कौन जीतेगा कौन हारेगा?
कौन हारेगा पार्टी में कौन डिस्कस कर रहा है हम? एजीपी जीतेगा, बीजेपी
जीतेगा, जो कांग्रेस जीतेगा अभी जोरहट में कांग्रेस जाएगा
जी। सही है,
लेकिन एक चीज बता रहा हूँ मैं कि पूछना चाहता हूँ आपसे कि
बोलिए,
वोट डालने के लिए एकदम सुबह सुबह आप लोग आ गए, बड़ा जोश है लगता है।
जोश है हम लोग का,
बहुत जोश है हम लोग, जो वोट देने जाएगा अभी।
पहले हम लोग क्या मारेगा?
हम लोग को कोई डोल नहीं, पहले वोट मारेंगे।
ये आदमी
डोल नहीं, लेकिन ऐसे आदमी सही है,
बस
अच्छा आदमी, ऐसा आदमी सही है, काम करना आदमी सही है।
पार्टी नहीं सही हमको, पार्टी नहीं सही है,
आदमी सही
है, कैंडिडेट से मतलब। हाँ, हम वोट देंगे तो 7 बजे पूरा दे देंगे, 7 बजे वोट देने का टाइम हो गया है, देंगे हम,
पहले हम ही वोट देंगे,
हम पार्टी से मतलब नहीं है।
तो चाय वाय पी ली आपने सुबह सुबह? पीने वाला शाम की चाय तो है, और आप चाय नहीं
पियेंगे? पहले दे लेंगे। चलिए,
ये थी असम के जोरहट से कुछ मतदाताओं की आवाज़ें सलमान रावी ने हम तक पहुंचाई थी, और टेलीफोन लाइन के जरिए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सलमान, आप हमें सुन पा रहे हो तो बताएं कि आज ये जो पहले चरण के लिए, विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होगा अब से कुछ देर बाद शुरू, प्रमुख सीटें कौन सी हैं इस दौर में, और किन प्रमुख उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का फैसला आज ईवीएम मशीनों में बंद होने जा रहा है?
देखिए, सबसे तो पहली बात यह है कि जो ये 65 सीटें हैं, यही तय करेंगी कि असम की राजनीति की दिशा क्या होगी और उसका भविष्य क्या होगा, राजनीतिक दलों का भी और कैंडिडेट का भी। खासतौर पे जो दो दो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, एक तो तरुण गोगोई जो अपना चौथा जो है टर्म के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर पेश किया, सर्बानंद सोनोवाल। तो ये काफी मजेदार टक्कर है। तरुण गोगोई की टीटाबोर सीट में, तरुण गोगोई का मुकाबला कामाख्या प्रसाद तासा से है जो सांसद भी हैं इस इलाके के, और उसके बाद मजुली में जहां से सर्बानंद सोनोवाल लड़ रहे हैं वहां पे राजीव लोचन पेगू है, उनसे मुकाबला है। उसी तरह से बोका खाट की जो सीट है, यहीं पर पास में काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां की सीट है ये, और वहां पर असम गण परिषद के अतुल बोरा चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला अरुण फुकन से है जो वहां पर सेकंड कैंडिडेट है। उसी तरह से मुकाबला जो है जोरहट में भी काफी मजेदार है, क्योंकि राणा गोस्वामी काफी चर्चित मंत्री हैं कांग्रेस के, और उनका मुकाबला हितेंद्रनाथ गोस्वामी से है। तो कुल मिलाकर के ये जो बहुत ही कांटे की टक्कर देखी जा रही है, और जैसा लोग मुझे यहाँ बता रहे हैं कि चुनाव में इससे ज्यादा मजा कभी पहले नहीं आया, क्योंकि संघर्ष काफी तगड़ा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन इस बार जो गठबंधन हुआ जैसा आपने बताया अभी, तो वो गठबंधन की वजह से काफी उसे उम्मीदें जगी हैं।
जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, चुनावी मुकाबला काफी तगड़ा है, संघर्ष काफी जोरदार है, लेकिन असम को हिंसा और सुरक्षा के हिसाब से भी काफी संवेदनशील राज्य माना जाता है, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं?
जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक मतलब जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर विद्रोही संगठन है उनके सदस्यों के लिए बैलेट का जो है, बैलेट पोस्टल बैलेट जो है, उसकी फैसिलिटी का इंतजाम किया है चुनाव आयोग ने, खास तौर पर जो बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लिए किया गया है। लेकिन उल्फा जिसने जो वार्ता के पक्ष में जो उसका धड़ा है, उसने तो घोषणा कर दी है कि वो अलग रहेंगे ये चुनाव की प्रक्रिया से। लेकिन इसके साथ साथ 3,739 जो पुलिस पोलिंग स्टेशन है वो संवेदनशील उन्हें घोषित किया गया है, जिसमें से 1,241 जो है वो क्रिटिकल, और लगभग 1,000 ऐसे भी हैं मतदान केंद्र जहां पर बिल्कुल ना तो सड़क का कोई नेटवर्क है ना मोबाइल का है। अच्छा, ये यहां पर एक मजेदार चीज ये भी है कि गाड़ियां तो अपनी जगह पर है, बैलगाड़ियों से भी मतदान कर्मियों को भेजने की व्यवस्था की गई थी, उन्हें बैलगाड़ियों से पहुंचाया गया कई इलाकों में।
जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, आपसे अगले कार्यक्रम में भी हम दोबारा संपर्क करेंगे। ये थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी असम से, असम से आई उनकी एक रिपोर्ट भी हम सुनेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं लगे हाथ पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भी आज ही विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। राज्य में अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, जिनमें से 184 सीटें पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही थी और इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के इरादे से कांग्रेस ने वाम दलों के साथ गठबंधन किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिलेगा। कोलकाता से हमारे सहयोगी अमिताभ भट्टाशाली कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अमिताभ, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी,
ये बताएं कि पहले चरण में आज किन प्रमुख सीटों पर चुनाव हो रहा है और इस दौर में प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन से हैं?
देखिए, आज जिन 18 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव मतदान होने जा रहा है वो सारे माओवादियों के एक जमाने का गढ़ माना जाता था। पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा और पुरुलिया, इन सब जिलों के 18 सीट में आज मतदान होने जा रहा है और इसमें करीब 40 लाख वोटर आज मतदान करने जाएंगे और इसमें 4,000 से भी ज्यादा 4,203 जो पोलिंग स्टेशन इसमें होंगे और जिसमें से आधा से भी ज्यादा लगभग 2,000 पोलिंग स्टेशन क्रिटिकल आइडेंटिफाई किया जा रहा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को मद्देनजर, और कम से हर एक पोलिंग स्टेशन में कम से कम 14 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात है। कम्युनिकेशन सिस्टम बना लिया गया, 2 हेलीकॉप्टरों से नजर रखेंगे सेंट्रल फोर्स ने। और इस इलाके में आज जो प्रमुख उम्मीदवार हैं वो है पश्चिमांचल इलाके का जो प्रगति का जो डेवलपमेंट का आभार जिस डिपार्टमेंट पर रहा पश्चिमांचल उन्नयन मंत्री जिसको कहा जाता है, सुकुमार हांसदा झारग्राम चुनावी क्षेत्र से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बांकुरा के ताल डेंगरा से सीपीआईएम के लोकप्रिय नेता अमियो पात्रो है चुनाव में, और बीनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पश्चिम मिदनापुर में है वहां से सांताली फिल्मों की हीरोइन बीरबहा हांसदा वो भी आज चुनावी मैदान में है।
जी, और ये बताएं कि इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने प्रमुख मुद्दे क्या हैं?
तृणमूल कांग्रेस जब उनकी पिछले 5 साल का कामकाजों का हिसाब लेकर के जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे श्रोताओं को पता होगा कि कई करप्शन केसेस सामने उभर के आया है पिछले 5 साल में। एक तो शारदा स्कैंडल था ही और 3 हफ्ता पहले एक दूसरी स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। नारदा न्यूज ने जो स्टिंग ऑपरेशन की है जिसमें देखा गया कि तृणमूल के कई प्रमुख नेता, मंत्री, सांसद पैसा ले रहे हैं लाखों में, तो ये चुनावी मुद्दा तो सामने उभर के आया है करप्शन की इशू।
जी, बहुत शुक्रिया। ये थे कोलकाता से हमारे सहयोगी अमिताभ भट्टाशाली, और एक बार फिर लौट रहे हैं असम, जहां जोरहट से बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने एक विशेष रिपोर्ट भेजी है।
चाय के बगान, ब्रह्मपुत्र का किनारा और नारियल और केले के पेड़ों के बीच बसे गांव। ऊपरी असम की खुशनुमा वादियों के बीच बसा है जोरहट, जो इस सूबे की सांस्कृतिक राजधानी भी है। अखुम राजाओं की आखिरी राजधानी रहा ये इलाका, असम की कला और संस्कृति को खुद में संजोए हुए है। ये इलाका अब सभी दलों के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में लगभग सारे बड़े चेहरे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी या फिर असम गण परिषद के हों। इस बार भी मुख्यमंत्री यहीं से होगा, चाहे वो किसी दल का क्यों ना हो। असम की राजनीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये इलाका, बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश राय।
जोरहट जिले से ही दोनों मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के लिए तो ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथी बार अगर सरकार में आती है तो ये असम में एक राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के नेतृत्व में, और भाजपा के लिए ये डू और डाई अर्थात करो या मरो की स्थिति है। तरुण गोगोई के राजनीतिक संन्यास के बाद उनके पुत्र गौरव गोगोई जो कलियाबर के सांसद हैं वो अपनी राजनीतिक क्षमता को धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पे निखार रहे हैं। राहुल ब्रिगेड के जितने भी यंग लीडर्स हैं वो पॉलिटिकली काफी इम्पोर्टेंट।
तीताबर सीट से कांग्रेस के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई चौथे कार्यकाल के लिए मैदान में हैं, मगर ये पहली बार है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कामाख्या प्रसाद तासा से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। मैंने तरुण गोगोई के चुनावी क्षेत्र जाकर कुछ मतदाताओं से मिलकर उनका मन टटोलने की कोशिश की।
झूठ क्यों बोलेगा सरकार को? झूठ बोलना तो खराब बात है। पूरी तरफ से जाइए तो कितना सुंदर रास्ता है, सरकार तो देता ही है लेकिन अपना आदमी लोग खराब करता है, लेकिन क्यों बोलेगा?
यहाँ पे तो डेवलप बहुत हुआ है, इससे तो टासा का भी पार्टी मजबूत है, उनका भी चांस है, 50-50 है।
आदमी अच्छे हैं, उनका जो सामसा है वो लोग थोड़ा खराब है।
जोरहट से ही भारतीय जनता पार्टी के सर्वानंद सोनोवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनावी क्षेत्र है माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा एक टापू है। भारतीय जनता पार्टी ने सोनोवाल को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। माजुली से जीतना उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये वो इलाका है जो बाकी की दुनिया से कटा रहता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए एकमात्र जरिया है नाव। नाव सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक ही चलती है और लोगों को नदी पार करने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है।
सर, ये आपने इसको रिजर्व किया है?
हाँ जी।
तो कितने पैसे चार्ज करते हैं आपको रिजर्व करने के लिए?
चार्जिंग 6,000।
तो हमेशा आने जाने के लिए आपको इतना पैसा खर्च करना है?
इन लोगों ने पूरी नाव किराए पर ली और इसके लिए 6,000 रुपये खर्च किए, मगर सबके पास उतने पैसे नहीं होते। मनिंदर दास अपने अनुभव बताते हुए कहते हैं कि कभी कभी नाव का सफर भी जोखिम भरा हो जाता है, खासतौर पर बरसात के दिनों में।
जब ज्यादा फ्लड होता है ना, 3-4 दिन तो ऐसे बंद रह जाते, जब तक थोड़ा पानी सूख नहीं जाता तब तक।
और कोई बीमार होगा
तो उस पर ही इलाज होगा, नहीं तो ऊपर वाला दुआ करके ऊपर वाला चला जाएगा, तो नाव नहीं चलेगा तो कैसे।
ब्रह्मपुत्र पर पुल की मांग काफी पुरानी है, इस बार सोनोवाल ने भरोसा दिलाया है कि पुल बन जाएगा। हालांकि नीमती घाट पर तैनात तुलसीदास कहते हैं कि अगर बना भी तो पुल को बनते बनते कई साल लग जाएंगे।
हम लोग नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, हमको नहीं, हम लोग का बाल बच्चा नाती उठी मिलेगा तो हम लोग का नाती उठी मिलेगा, हमारा बेटा, हमारा बेटा का बेटा तो होने से मिलेगा, नहीं से ऐसा ही सरका जाएगा, ऐसा ही दिक्कत हो जाएगा।
लेकिन राजनीतिक दलों के चुनावी मुकाबले के बीच जोरहट और इसके आस पास के इलाकों के रहने वाले असमिया लोगों का बस इतना सा सपना है कि सदियों से अमन और चैन से जीते आ रहे इन लोगों की संस्कृति बची रहे और कोई भी यहाँ की आबो हवा में कभी जहर न घोल पाए। सलमान रावी, BBC, जोरहट, असम।
तो जैसा कि आपने सुना, असम और पश्चिम बंगाल में जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग है, वहीं जम्मू कश्मीर में अंततः वो घड़ी आ गई है जब लगभग 3 महीने बाद राष्ट्रपति शासन समाप्त होगा और भाजपा के समर्थन वाली PDP सरकार बन रही है। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाली हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
PDP की 56 वर्षीय अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल समेत आज जम्मू में शपथ ग्रहण कर रही हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि महबूबा के कहने पर ही शपथ समारोह को लो प्रोफाइल रखा गया, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई मंत्री शपथ समारोह में उपस्थित होंगे। 7 जनवरी को जब मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद का देहांत हो गया तो घाटी में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने BJP को वो शर्तें मानने पर मजबूर किया जो मुफ्ती सईद ने गठबंधन के लिए रखी थीं। इन शर्तों में विकास और राजनीति के कई मुद्दे थे, लेकिन इस दौरान भी वो साफ कहती रहीं कि इनके पिता मुफ्ती सईद का किया हुआ फैसला पत्थर की लकीर है।
और मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहूंगी कि जैसे हम कश्मीरियों पे इल्जाम लगा रहता है कि ये शायद अपनी बात के पक्के नहीं है। मेरे वालिद अपनी बात के पक्के थे, मैं भी उनकी बात के पक्की हूँ, मगर जहाँ उन्होंने एक अलायंस जोड़ा, एक रिश्ता जोड़ा BJP के साथ, NDA के साथ, वहाँ उसमें एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना है, कुछ हमने आपस में एक प्रोग्राम तय किया है।
आखिरकार BJP ने दावा किया कि महबूबा मुफ्ती बगैर किसी शर्त के शपथ ग्रहण करने पर राजी हो गई हैं। नई दिल्ली में महबूबा मुफ्ती को कश्मीर की नई राजनीति में अलगाववादियों के समर्थक के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहां के अलगाववादियों ने भाजपा के साथ हाथ मिलाने पर इनकी पार्टी PDP की खूब आलोचना की है। दूसरी तरफ वो सारे वादे हैं जिनके बल पर ये सरकार बनी थी, लेकिन वो अभी तक पूरे नहीं हुए। क्या ऐसे में महबूबा एक मजबूत सरकार की मुख्यमंत्री होंगी? मैंने पूछा विश्लेषक बशीर मंजर से।
जो भी एजेंडा फाइनेंस में इश्यूज डिस्कस किए गए हैं उनमें से अगर 50% को ही ये इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अगले 5 सालों में तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहेगी।
गौरतलब है कि मुफ्ती सईद के नेतृत्व वाली 10 महीने की सरकार के दौरान राज्य में गौमांस या हिंदू मुस्लिम तनाव को लेकर कई बार राजनीतिक विवाद पैदा हुआ। बशीर मंजर कहते हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा हुई तो महबूबा के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी।
अगर वैसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज फिर इमर्ज होके आगे आ जाती है तो मुश्किल होगा, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद जब तक थे वो बहुत ही सीनियर थे, बहुत ही स्टेट्समैन टाइप के थे, वो शायद बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेते थे। लेकिन अगर वैसी कंट्रोवर्सीज अब के बाहर आगे आती हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये सरकार तब टिक नहीं पाएगी अगर ऐसी कंट्रोवर्सीज फिर दोबारा आती हैं।
कश्मीर की विधानसभा में कुल 27 सीटें हैं जिनमें से पीडीपी को सबसे ज्यादा यानी 28 पर जीत मिली थी। मुफ्ती सईद के निधन के बाद अब पीडीपी के पास 27 विधायक हैं। इसकी समर्थक बीजेपी के पास 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15, कांग्रेस के पास 12 और अन्य के पास 7 हैं। महबूबा मुफ्ती इस वक्त पार्लियामेंट मेंबर हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इन्हें अपने पिता की असेंबली सीट और अपनी पार्लियामेंट सीट के लिए नए उम्मीदवारों की तलाश भी करनी है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो ऐसा क्या कर दिखाती हैं जिससे भाजपा के साथ इनकी राजनीतिक दोस्ती सुहानी लगे। रियाज मसरूर, बीबीसी, श्रीनगर।
उधर कोलकाता में कल खेले गए 2020 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। मैच के आखिरी ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर ब्रेट वेट के लगातार 4 छक्के इंग्लैंड की हार पर मोहर लगा गए। ये मैच विनिंग पारी और तमाम दूसरे पहलुओं पर हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन से बात की।
क्रेडिट देनी होगी ब्रेट वेट को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो छक्के लगाए हैं, 4 छक्के, और बेन स्टोक्स कोई ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, बहुत ही तजुर्बेकार हैं और इसके पहले मैच में सेमीफाइनल में बहुत ही चतुराई से उन्होंने डेथ ओवर्स किए थे। तो यहाँ मैं कहूंगा कि पूरा क्रेडिट देना चाहिए ब्रेट वेट को। 18 रन बनाना ओवर में आसान नहीं है, खास करके आखिरी ओवर। ब्रेट वेट को जब स्ट्राइक मिली तो बहुत कम लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ये मैच खुद अपने बल्ले से जिता सकते हैं, और जिस तरह से उन्होंने दिलेरी दिखाई है मैं मानता हूँ कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट के लिए आगे जाते हुए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगी।
यॉर्कर सबसे अच्छी गेंद होती है, लेकिन वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स के पास तो फुटवर्क है ही नहीं, तो आपको लगा कि बिल्कुल टेलर मेड गेंद मिली 4 छक्के लगाने के लिए?
मैं नहीं कहूंगा टेलर मेड गेंद मिली, क्योंकि जिस तरह से T20 क्रिकेट अब आगे बढ़ रही है या इवॉल्व हो रही है, एक चीज तो साफ जाहिर हो गई कि पावर हिटर्स जो है बहुत ही असरदार बनते हैं। हमने इंडिया के खिलाफ भी देखा जिस तरह से आंड्रे रसेल और लैंडल सिमंस ने बल्लेबाजी की थी सेमीफाइनल में, हालांकि क्रिस गेल जल्द आउट हो गए, आंड्रे रसेल ने कुछ खास नहीं रन बनाए, ना लैंडल सिमंस चल पाए, लेकिन मार्लन सैमुअल एक जगह पकड़ के रखे, एक पार्टनरशिप बनाई ड्वेन ब्रावो के साथ, और उसके बाद जो पावर हिटिंग चाहिए थी वो ब्रेट वेट ने दिखाया कि किस तरह से काम आती है पावर हिटिंग इस T20 फॉर्मेट में।
और क्यूरेटर की आप कितनी तारीफ करेंगे? ऐसा नहीं था कि सिर्फ बल्लेबाजों के लिए इस विकेट में सब कुछ था।
मेरे ख्याल से तो ये सबसे अच्छी विकेट थी इस पूरे टूर्नामेंट की, क्योंकि यहाँ पर हालांकि रन बने बल्लेबाजों से, लेकिन इस पिच में कुछ अच्छा खासा हेल्प था, तेज गेंदबाजों के लिए भी था और स्पिनर्स के लिए भी था।
जो रूट के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, जो रूट एक चमत्कारी बल्लेबाज निकले या क्रिकेटर निकले इंग्लैंड के लिए, केवल 3 साल के अंदर अंदर वो टॉप नॉच बैट्समैन बन गए विश्व के। अब मैं मानता हूँ अब विश्व में अगर 4 बल्लेबाजों पे जिन पे निगाहें होनी चाहिए जो एक एज ग्रुप के हैं, वो है विराट कोहली, विलियमसन, स्टीव स्मिथ और जो रूट। चारों ही बहुत ही होनहार और अपनी टीम के लिए दिग्गज खिलाड़ी बन गए। जो रूट ने तो कमाल कर दिया, पहले ओवर में 2 विकेट भी प्राप्त कर ली।
और विराट कोहली जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल तक सबसे ज्यादा रन बनाए थे, क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो पारी जहां पर भी उन्होंने रन बनाए वहां पर अपनी टीम को सेव किया और ज्यादातर जिताया। एक मैच में वो जिता नहीं पाए, वो थी सेमीफाइनल, लेकिन वहां पे भी एक तरह से वन मैन शो हो गया था। तो एक तो ये है कि कितने रन बनाए, दूसरी है क्वालिटी ऑफ बैटिंग, और दोनों ही नजरिए से अगर आप देखें तो विराट कोहली इस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन बैट्समैन थे।
अगले कार्यक्रम विश्व भारती में साप्ताहिक स्तंभ खेल खिलाड़ी में खेल की खबरें आप विस्तार से सुन सकेंगे, लेकिन पहले आइए जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। हरिता कांडपाल कई अखबारों के साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी संदीप, जैसे कि बात अभी मैच की ही हो रही थी तो सबसे प्रमुखता से सभी अखबारों ने इसे लिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है बेस्ट इंडीज, 49 दिनों में वेस्ट इंडीज ने तीसरा विश्व कप जीता, ये पुरुष वर्ग में जीता है। महिलाओं ने भी, महिला टीम ने भी विश्व कप जीता और अंडर 19 विश्व कप भी वेस्ट इंडीज के ही नाम था। द हिंदू अंग्रेजी अखबार ने लिखा है किंग ऑफ द वर्ल्ड, और हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है वेस्ट इंडीज ने रचा इतिहास, पुरुष और महिला दोनों टीमों ने विश्व कप जीता, तो ये इतिहास रचा। अमर उजाला ने और बाकी सभी अखबारों ने बहुत बड़ी प्रमुखता से इस खबर को छापा है। अमर उजाला ने लिखा है पठानकोट जांच से जुड़े NIA के DCP की हत्या, 24 गोलियां मारी, कई आतंकी हमलों की जांच से जुड़े थे तंजिल, पत्नी को भी 4 गोलियां लगी और उनकी हालत गंभीर है। इसी खबर पर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है NIA ऑफिसर प्रोबिंग पठानकोट अटैक गन डाउन इन यूपी,
उत्तर प्रदेश के बिजनौर की घटना है।
कल इनको गोलियां मारी गई थी और इनकी मौत हो गई है। इसके अलावा एक और खबर जो मैं देख रही हूँ, पायनियर ने लिखा है अंग्रेजी अखबार GST सून, मोदी वूज सऊदी इन्वेस्टर्स, GST बिल जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा है, मोदी ने कहा कि वो जल्द ही हकीकत होगा और सऊदी में निवेशकों को रिझाने की कोशिश थी ये, ऐसा पायनियर अखबार का कहना है। और नवभारत टाइम्स ने एक खबर छापी है इस्लामिक स्टेट के समर्थक 4 भारतीयों को सीरिया ने छोड़ा, दमिश्क में ये बंद थे।
बहुत शुक्रिया हरिता, और हर सोमवार की तरह वक्त हो चला है पाकिस्तान डायरी का। आइए सुनते हैं आज वस्तुल्लाह खान अपनी डायरी में क्या लेकर आए हैं।
आखिर इसमें कौन सी आपत्ति है अगर नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने माली सहायता उपलब्ध करने वाले तमाम भारतीय उर्दू लिखारियों और मैगजीन एडिटर्स को 2 गवाहों की मौजूदगी में ये शपथ फार्म भरने को कहा है कि मेरी पुस्तक या मैगजीन में ऐसा कुछ नहीं जो भारत सरकार की पॉलिसियों के या राष्ट्रीय हित के खिलाफ हो या जिससे समाज के अन्य वर्गों में नफरत फैलती हो। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि उर्दू वाले और उनके हिमायती दूसरी भाषाओं के लिखारी इतनी ज़रा सी बात पे क्यों शोर मचा रहे हैं। ये काम तो स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय ने राष्ट्रीय विचारधारा की एकता के लिए किया है। वैसे भी अगर आप किसी से पैसे ले रहे हैं या अपनी पुस्तकें उसे बेच रहे हैं तो फिर आप उसके आदेश का पालन क्यों नहीं करेंगे? ये कोई आपके पैसे तो नहीं है, सरकार अपनी जेब से दे रही है ना। हमारे पाकिस्तान के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के हर सदस्य को, भले वो मुसलमान हो के ना हो, ये शपथ लेना पड़ती है कि मैं कुरान या भगवद गीता या बाइबल या ग्रंथ साहब पे हाथ रख के कसम उठाता हूँ कि इस्लामिक विचारधारा की बुनियाद पे बनाए गए देश के संविधान का पालन और इसकी रक्षा करूँगा, अल्लाह मेरा हामी व नासिर हो। मैंने तो आज तक किसी पाकिस्तानी मेंबर पार्लियामेंट को इस पे नाक भौं चढ़ाते नहीं देखा। मगर शपथ ग्रहण करने का फॉर्म सिर्फ उर्दू लिखारियों और एडिटरों के लिए है या हर भारतीय भाषा के विकास के लिए स्थापित हर उस सरकारी संस्था के लिए है जो लिखारियों की मदद करती है? हो सकता है किसी सरकारी जांच कमीशन ने ये खोज लगा ली हो कि सरकार की आलोचना और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बातें सिर्फ उर्दू पुस्तकों और पत्रिकाओं में ही होती हैं। अगर सिर्फ उर्दू में ही होती हैं तो वेरी बैड। हो सकता है भारतीय भाषाओं और बोलियों के विकास के लिए ये कोई नया सरकारी पायलट प्रोजेक्ट हो जो अगर उर्दू लिखारियों को नकेल डालने में सफल हो गया तो फिर हिंदी, कन्नड़ा, मैथिली, बंगला समेत हर भाषा के लिखारी से कहा जा सकेगा कि आप भी उर्दू लिखारियों की तरह आराम से अच्छे बच्चों की तरह गला घुटवा लें। मतलब ये कि रौनक मेला लगे रहना चाहिए, भले वो लव जहाद की शक्ल में हो, कि गौ हत्या रोकने की योजना हो, कि JNU के देशद्रोहियों को मज़ा चखाने के रूप में, कि उर्दू लिखारियों को सरकार विरोधी लेखक ना छपवाने की कसम दिलवाने की सूरत में। यूं भी दुनिया भर में सरकारें ऐसे छुटपुट मामला तभी सुलटाती हैं जब बड़े बड़े मामले सुलझाए जा चुके हों। अब क्या बाकी 4 साल हाथ पे हाथ रखे बैठे रहें? परेशान ना हो, सीमा पार नवाज शरीफ सरकार भी ऐसे ही मसले आजकल हल करने में जुटी पड़ी है, क्योंकि कोई बड़ा मसला उसकी पकड़ में आ नहीं रहा।
पाकिस्तान से वस्तुल्लाह खान की डायरी के बाद कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज। असम में 126 में से 65 सीटों पर मतदान होगा और पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पनामा की कंपनी मोसाक फोनसेका के गोपनीय दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनमें कई प्रभावशाली लोगों के तार इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब में पुलिस को निशाना बनाकर किए गए हमले में एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सीरिया में चरमपंथी संगठन अलकायदा के सहयोगी नुसरा फ्रंट के एक प्रवक्ता की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मदद कर रहे थे राजेश चौहान। ठीक एक घंटे के बाद विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।